नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीट के लिए कल वोट डाले गए। असम में 85% से अधिक और केरलम में 78% से अधिक मतदान हुआ। पुदुचेरी में लगभग 89% मतदान हुआ। पुदुचेरी में अब तक का यह सर्वाधिक मतदान है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए नाम वापस लेने और दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन था। तमिलनाडु में भी कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। मतगणना 4 मई होगी। असम के बराक घाटी में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सिलचर, करीमगंज और हैलाकांडी के स्ट्रांग रूम में रखा गया है।
दक्षिण असम की बराक घाटी में भी कल मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, जहां लगभग 84% मतदान हुआ। कछार जिले में भी लगभग 84% मतदान हुआ, जहां सिलचर शहर में मतदान करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। हैलाकांडी के निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। चाय बागान श्रमिकों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने वहां अधिक रुचि दिखाई। श्रीभूमि में घाटी में सबसे अधिक लगभग 85% मतदान हुआ। कुछ विशेष मतदान केंद्रों का संचालन केवल महिला अधिकारियों द्वारा किया गया। सिलचर से शाश्वती भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश मीणा।
उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद में अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश ने जेम पोर्टल के माध्यम से 22,337 करोड़ रुपए की खरीद की। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम खरीद नीति की सराहना करते हुए राज्य को पारदर्शी खरीद में एक आदर्श राज्य घोषित किया। राज्य के सभी विभागों में शहरी विकास विभाग का हिस्सा सबसे अधिक रहा, जिसने पोर्टल के माध्यम से 3,606 करोड़ रुपए की खरीद की। जेम के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के नथिया नावागांव के पास 2 कारों की आमने सामने की टक्कर से हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें कांकेर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी थी। ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। नए अधिनियम में 50% पद भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने और न्यूनतम 67% पद अपर महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। नवगठित कानून का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वाशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट की। व्हाइट हाउस में इस बैठक के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और क्वाड ढांचे पर जोर देते हुए भारत अमरीका साझेदारी की समीक्षा की। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर भी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा रचनात्मक और भविष्य के अनुकूल हुई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अगले महीने भारत आने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संघर्ष से जुड़े मौजूदा संघर्ष विराम की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल प्रवाह के संबंध में सहमत शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। व्हाइट हाउस ने संघर्ष विराम समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के अपने समर्थन को दोहराया और ईरान की सेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर टोल लगाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत को मंजूरी दे दी। इन वार्ताओं का उद्देश्य ईरान समर्थित हिजबुल्ला को निरस्त करना और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की संभावनाओं को तलाशना है। खबरों के अनुसार प्रस्तावित वार्ता अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने की उम्मीद है। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सुश्री कोलाकल देवकी अम्मा जी के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये चर्चा आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।